Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरामेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाशिपद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 ओम ओम ओम। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के पांचवें मंत्र की व्याख्या बची हुई है, उसको पूरा करते हैं। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्याश्च सर्वान् परिणामयद्यः सर्वमेतद् विश्वमधितिष्ठत्येको गुणाश्च सर्वान् विनियोजयद्यः तद्वेदगुह्योपनिषत्सुगूढम् तद्ब्रह्मा वेदति ब्रह्मयोनिम् ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवः गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपत्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। यह विश्वयोनि, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म, इस तरह ब्रह्म के तीन रूप का उपनिषद ने वर्णन किया है। समस्त ये जगत कार्य ब्रह्म है, कार्य के रूप में प्रतीत होने वाला ब्रह्म ही है। दूसरा कारण ब्रह्म, ये कार्यात्मक विश्व प्रपंच का जो निमित्तोपादान विवर्त निमित्तोपादान कारण के रूप में विद्यमान है। कोई लोग केवल निमित्त कारण मानते हैं परमात्मा को, लेकिन वेदांत दर्शन परमात्मा को विवर्ती निमित्त उपादान कारण मानते हैं, उसको कारण ब्रह्म के रूप में लेते हैं। और वेदांत दर्शन ब्रह्म को कार्य कारणातीत भी मानता है, क्योंकि ब्रह्म का असली स्वरूप तो वही है। पहला स्वरूप कार्य उपाधि है, दूसरा स्वरूप कारण उपाधि है, तीसरा स्वरूप निरुपाधिक है। तो यहां विश्व योनि ही ये कारण ब्रह्म का नाम है, सारे विश्व का जो कारण है योनि ही। यच्च स्वभावं पचति, जो अपने द्वारा प्रकट किए हुए ये तमाम पंचभूतात्मक प्राकृत पदार्थों को, हर वस्तु को अपने स्वतंत्र स्वभाव से युक्त करता है। पृथ्वी, उस पृथ्वी को उसके स्वभाव से वह युक्त कर देता है। जल, उस जल को परमात्मा उसके स्वतंत्र स्वभाव से युक्त कर देता है। तेज को उसके स्वभाव से युक्त करता है। वायु को, आकाश को, पंचतन्मात्राओं को, तत्तत् उस कार्यभूतों को तत्तत् अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव से युक्त करता है। किसी भी भूतों को स्वतंत्र स्वभाव से युक्त करने का प्रयोजन क्या है? तो बताया कि उनकी अपनी पहचान के लिए ऐसा किया है। पृथ्वी को, पृथ्वी की पहचान के लिए पृथ्वी के जो स्वभाव है उससे युक्त कर दिया। काठिन्यता ये पृथ्वी की स्वभाव है, कठोरता, काठिन्यता ये पृथ्वी का अपना स्वभाव है। पृथ्वी कठोर होगी, जल जैसा ये नरम नहीं है, और पृथ्वी में गंध विद्यमान होंगे। तो जब कभी भी हम पृथ्वी को जानना होगा हमें, तो इस पृथ्वी के जो स्वभाव है, इसी को भाषांतर में कहना हो तो धर्म कहा जाएगा। क्योंकि जो वस्तु का जो स्वभाव है, जातिगत स्वभाव है, वो उसका धर्म कहलाता है, और वो धर्म ही उसकी विशेषता बनकर उसके पहचानक में कारण बनते हैं। जल को बनाया और जल को उसके स्वभाव से युक्त कर दिया। जल का स्वभाव है तरल, काठिन्यता जल का स्वभाव नहीं है। यदि किसी प्रसंग से उसमें कठोरता आ जाता है तो वह स्वभाव नहीं है, विभाव है। किसी देश के चलते उसमें काठिन्यता आ गया, किसी अन्य वस्तु के संयोग से चलते उसके में काठिन्यता आ गया, किसी काल के चलते उसमें काठिन्यता आ गया। लेकिन जल स्वभावतः तरल है, द्रवयुक्त है, तरल है, और उसके पहचान के लिए विशेष गुण है, मधुर रस, अवास्वर शुक्लता, ये सब परमात्मा ने उस जल के स्वभाव में पक्का कर दिया। दूसरी बात है, उसके जो स्वभाव बनाया वो उसमें इतने पक्का कर दिया। ये पचती शब्द से ये कह रहे हैं, उसको तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, पक्का हो गया है। तो हम कल संकेत कर रहे थे कि परमात्मा की सृष्टि बड़ी पक्की सृष्टि है, और हमारी सृष्टि तो बड़ी कच्ची है। तेज बनाया, वायु बनाई, आकाश बनाया, सबको अपने अपने स्वभाव से युक्त कर दिया। पाश्चात सर्वान परिणाम यद्य, यह विश्वयोनि परमात्मा उन तत्त्व पदार्थों के स्वभाव को पक्का कर देने के बाद तो उन पदार्थों को अन्य रूप में परिणत करना आरंभ किया। अब आपको एक दृष्टांत से ये बात समझ में आएगी। जैसे सोना है, वह गोल्ड, सोना वह पीला होता है, तो पीलेपना ये सोने का पहचान है, स्वभाव है, सोना पीला ही होगा। और उस पीलेपन को सोने में परमात्मा ने ऐसा चढ़ा दिया कि तुम उसको उतार ही नहीं पाओगे। सोने में से पीलापना उतार पाओगे किसी केमिकल से है? और यदि वह सोने में से पीलापना यदि उतर जाता है किसी माध्यम से, तो ये समझ लेना कि वो सोना परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है, असली सोना नहीं है, वो फिर डुप्लीकेट होगा। आजकल बाजार में मिलता है कि नहीं, नकली सोना है, सोने के नाम पर बेचते हैं और देखने में बिल्कुल पीला है, क्या सुंदर चमक है उसमें, क्या शाइनिंग है, और उसको खरीद के लाओ और पहन लो, वर्ष छह महीने में उसकी वो चमकपना पीलापना उतर जाएगा और फीका पड़ जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अरे ये तो नकली निकला। अब आप विचार करो, नकली और असली की परिभाषा क्या है? आप क्या परिभाषा करोगे नकली और असली की? परमात्मा का बनाया हुआ जो होगा वो असली होगा, और जीवात्मा का बनाया हुआ होगा वो नकली होगा, है? यही असली और नकली की परिभाषा है। परमात्मा का बनाया हुआ जो सोना है वो आग में डालो, पानी में डालो, नमक में डालो, कास्टिक में डालो, कहीं भी डाल दो, उसमें से चमक यानी पीलापन हटने वाला नहीं है। यच्च स्वभावं पचति, परमात्मा ने इतना पक्का कर दिया है। इसी तरह नीलम पत्थर है, स्टोन है नीलम, उसमें जो नीलिमा है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, स्वभावं पचति पक्का कर दिया है। उस स्टोन में से, उस पत्थर में से नीले कलर को तुम हटा नहीं पाओगे। यदि हट जाता है किसी कारण से तो फिर असली नीलम नहीं होगा। अब हीरे में जो श्वेतपना है, सफेदपना है, किसने बनाया? यच्च स्वभावं पचति, उसने पक्का कर दिया उस हीरे में सफेदपना। तो हीरे के सफेदी को तुम यदि उतारना चाहो, हटाना चाहो, तो किसी हालत में नहीं हटा पाओगे, क्योंकि उसने इतना पक्का बना दिया कि वही उसका स्वभाव बन गया। सफेद स्वच्छ होना ही हीरे का स्वभाव है, और उस स्वभाव को इस तरह पक्का कर दिया है कि उसको धूप में रखोगे तभी वो सफेदी उतरने वाली नहीं, पानी में डाल दोगे तो भी उतरने वाली नहीं है, आग में डालोगे तो भी वो सफेदी उतरने वाला नहीं है, पक्का हो गया है। यच्च स्वभावं पचति, और जिसका जो स्वभाव बन जाता है उसका अतिक्रम करना संभव नहीं है। इसलिए आपके भी दो स्वभाव हैं, एक तो ये पक्का स्वभाव है, दूसरा कच्चा स्वभाव है। पक्का स्वभाव को तो कोई भी आपको जीवन से हटा नहीं पाएगा, इसलिए उसके बारे में नीतिकारों ने कह दिया है स्वभाव दुरतिक्रम। जिसका जो स्वभाव पड़ गया बचपन से ही, जिसकी जो आदत पड़ गई है जन्म से ही, जिसकी जो आदत पड़ गई है, उस आदत को तो स्वभाव कह देते हैं, और उस आदत को, उस स्वभाव को कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि वो जन्म से ही सिद्ध हो गया। वो यच्च स्वभावं पचति। दूसरी बात, पाश्चात्य सर्वान परिणाम यदि, उसके स्वभाव को पक्का करने के बाद उसने उसको बदलना शुरू किया, यानी दूसरे रूप में, कार्य के रूप में दिखाना शुरू किया, स्वभाव को छोड़े बिना कार्य के रूप में प्रतीत होने लगा, अन्य रूप में प्रतीत होने लगा। जैसे ये बात वैष्णव लोक, वैष्णव सिद्धांत में, परमात्मा के बारे में वैष्णव सिद्धांत में ये बात पक्की है, वे लोग परमात्मा को स्वरूप परिणामी कारण मानते हैं। परमात्मा को क्या मानते हैं? स्वरूप परिणामी कारण मानते हैं। परमात्मा जगत का कारण है, लेकिन परमात्मा परमात्मा के रूप में रहते हुए जगत के रूप में परिवर्तित हुआ। जगत के रूप में प्रतीत होते हुए भी उसने परमात्मा ने अपनी परमात्मा पना को छोड़ा नहीं। ये इस दो पंक्तियों से ही बात स्पष्ट होता है। यच्च स्वभावं पच्यति पाश्चात्य सर्वान् परिणाम यदिह। अपने स्वभाव को पक्का रखते हुए अन्य रूप में प्रतीत होना। उदाहरण देते हैं, जैसे सुवर्ण, सुवर्ण अपने स्वभाव अर्थात उसकी चमक को सुरक्षित रखता हुआ आभूषण आदियों के रूप में वह परिवर्तित प्रतीत होता है। यही सर्वान् परिणाम यत्। आभूषण क्या है तो बोले सुवर्ण का ही परिवर्तित नाम है, रूप है, परंतु आभूषणों के रूप में सुवर्ण परिवर्तित होने पर भी सुवर्ण की सुवर्णता, ये चमकपना वो खोई नहीं है, गया नहीं है, हटा नहीं है। परमात्मा इस सारे जगत के रूप में प्रतीत होने पर भी परमात्मा की परमात्मापना हटा नहीं है, गया नहीं है, यथावत है। जैसे सफेद दूत का स्वभाव है, कहीं भी दुनिया में लाल दूध दिखा है आप लोगों ने, जो प्योर दूध होगा, असली दूध होगा, वो लाल थोड़ी होगा। लाल होगा तो फिर रक्त हो जाएगा, दूध तो होगा नहीं। उसी स्तन में से जब गाय दूहते हो तो दूध के रूप में जो आएगा वो सफेद ही आएगा, और यदि कदाचित वह दूध के साथ साथ कुछ लाल कण आने लग गए तो आप कहोगे कि अरे रे रे रे, रे, रे। गाय बीमार हो गई। बोले क्यों? बोले दूध में रक्त आने लग गया। तो जो लाल होगा तो रक्त होगा, दूध तो होगा नहीं, दूध तो सफेद ही होगा। दूध को सफेद ही रहना चाहिए, ये नियम बनाया किसने? तो वही यच्च स्वभावं पच्यति, पक्का कर दिया उसने। अब लाल दूध कभी हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य सर्वान् परिणाम यद्यः, और जब दूध निकला था वो तो सफेद, सफेद के ही रूप में वह अपने सफेदी को छोड़े बिना दूध दही के रूप में हो गया। ये क्या हुआ? परिणाम। दूध दही के रूप में होना है, दही बनता है, दही बनेगा, ये नियम किसने बनाया? पानी का दही क्यों नहीं बना है? पानी का दही क्यों नहीं बना? दूध का ही दही क्यों बनता है? मिट्टी का दही क्यों नहीं बन रहा है? दूध का ही दही क्यों बनता है? तो वो परमात्मा ने, दही बनाना है तो दूध से बनेगा, दूध ही दही के रूप में परिणत होगा। ये नियम भी पक्का किसने किया? परमात्मा ने ही बनाया। दूध से दही बनाया तब वो निश्चिंत हुआ कि ये ठीक है। और दूध से दही जब तक नहीं बनता है तब तक वो उसको दही बनाने का कोशिश किया, क्या मिलाकर क्या करके ये दही बनेगा? अमुक समय तक बर्तन में रखे रहोगे तो दही बनेगा, वो नियम उसी ने बनाया। दूध को गर्म करके किसी बर्तन में रख दो, अब उसमें कोई जामुन आदि मिला लो, मट्ठा या दही अंतर की मिला दो, तो जरा जल्दी बनेगा दही। और यदि ये सब कोई जवान जामन आदि कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बर्तन में ढक के रख दो, शाम तक नहीं तो कल तक तो बन ही जाएगा दही। कुछ न मिलाओ तो भी अपने आप ही बन जाएगा। तो ये उसका स्वभाव है और स्वभाव अनुसार परिणाम। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस सफेदी छोड़ा नहीं उसने, दूध से दही होने पर भी दूध की सफेदी छोड़ी नहीं है। ये विरूप परिणाम मानते हैं, मधुरता से खट्टा हो गया तो दही को ही खट्टा होना होगा। दही जमाकर जमाया हुआ दही में यदि थोड़ी बहुत खटास नहीं होगी तो आप कहोगे कि ये दही ठीक नहीं है, ये अभी दही पक्का नहीं हुआ है, दही ठीक से जमा नहीं है, दूध का ही स्वाद आने लग जाए दही में तो स्वाद तो बदलने पड़ेगा ना, तो सफेदी नहीं बदलेगी, स्वाद बदल जाएगा। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिहि पाच्यांश्च सर्वान् परिणाम यदि यः। वैष्णव दर्शन में यही कहा गया है कि परमात्मा ही अपनी सच्चिदानंद अद्वितीयता स्वरूप को यथावत रखते हुए ये अनेक रूप में विश्व में अनेक रूप हो गया। तो तुम्हारे सामने जो कुछ भी है, घट है तो वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है, तुम्हारे सामने घर है तो वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है, एक छोटी सी चींटी है तो वह भी परमात्मा का स्वरूप है, बड़ा सा बड़ा जीव है हाथी डायनासोर वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा इन रूप में प्रतीत हुआ, इसीलिए प्रतीत हुआ है कि सभी को परमात्मा की अनुभूति हो सके। तो आसानी से सभी को परमात्मा की अनुभूति हो सके इसके लिए परमात्मा ने अनेक रूप धारण कर ली, लेकिन हम ऐसे हो गए कि अनेक रूप तो देखे परमात्मा को नहीं देख रहे। सुवर्ण अनेक रूप इसलिए हुआ है आभूषणों के रूप में ताकि सभी सुवर्ण की प्रतीति कर ले, लेकिन हम ऐसे हो गए हैं कि कार्य में कारण इस तरह छुप गया है कि कार्य तो दिखता है कारण खो जाता है, जबकि हर कार्य में कारण पूर्ण रूप में विद्यमान है। आभूषण सौ प्रतिशत सुवर्णता विद्यमान है, लेकिन हम आभूषणों को देखते हैं सुवर्ण को नहीं देखते हैं। हमें वो घटना याद आ गई, बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूं लगभग 40 वर्ष पुरानी बात है। एक सज्जन को किसी ने कहा कोई ग्रह दशा आदि थोड़ा कष्ट दे रहे थे, तो किसी ज्योतिष ने कहा कि तुम ग्रहण स्नान करो, सूर्य ग्रहण हो रहा है, ग्रहण स्नान करो और उस ग्रहण में सुवर्ण का दान करो, ग्रहण में जाकर सोने का दान करो, उससे तुम्हारी यह ग्रह दशा थोड़ी कम हो जाएगी। वो बेचारा विश्वास कर गया और पहुंच गया कुरुक्षेत्र, क्योंकि सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण है और चंद्र ग्रहण काशी का और सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में, सूर्य कुंड में स्नान सूर्य ग्रहण के समय में, ये शास्त्र ने उसका बहुत अनंत गुण फल महत्व बताया है, महान फल बताया है। तो पहुंच गया वहां, तब तक ग्रहण लग चुका था और ग्रहण लग चुका था और कुरुक्षेत्र 40 साल पहले वो क्षेत्र था, गांव का क्षेत्र है, कोई शहर का क्षेत्र तो था नहीं, अभी डेवलप हो गया, बहुत बड़े बड़े बाजार बन गए, दुकान बन गए। तो हमसे कहने लगा, महाराज हमको एक ज्योतिष ने कहा था कि ग्रहण के पर्व के काल में सुवर्ण दान करना है, ऐसा कहा था, लेकिन हम आते समय में वह सुवर्ण भूल गए, लाना भूल गए। अब यहां कहां मिलेगा महाराज, तो अब ये बाजार में इधर खोजे उधर खोजे कहीं नहीं मिले। बोले मैं घंटों हो गया सारा बाजार घुमा, कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा है सोना, क्या करे महाराज। उसकी परेशानी थी, तो हमने उसके गले में देखा तो चेने लटकी हुई थी। हमने कहा क्यों परेशान होते हो, मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं, सोना कह रहा है मुझे क्या ढूंढ रहा है तू, मैं तो तेरे पास हूं तेरे साथ हूं, लेकिन दृष्टि नहीं है करें क्या। तो मैंने कहा कि अरे सोना तो तुम्हारे पास ही है। बोले कहां महाराज, बोले ये क्या है, ये तो चेन है महाराज। अच्छा चैन है किसका है, इसके उपादान कारण क्या है। हमने पूछा तो वो उपादान कारण शब्द का अर्थ ही नहीं जानता था, तो क्या उत्तर देगा वो, इसका उपादान कारण क्या है पूछा तो उत्तर ही नहीं दे पाया। हम समझे नहीं महाराज, कहने लगा। तो ऐसे भी होते हैं जिसको उपादान कारण इस शब्द का अर्थ ही बोध नहीं है। आप लोग तो बहुत श्रुत हो इसलिए आपको समझ में आ गई है उपादान कारण क्या होता है, निमित्त कारण क्या होता है, शब्दार्थ का बोध हो जाता है आपको। अरे बाबा, उपादान कारण उसको कहते हैं जिससे ये हार बना है, ये जंजीर बनी है, लॉकेट बना है। किसका है ये? मिट्टी का है कि कागज का है कि पत्थर का है कि किस चीज का है? बोले ये तो गोल्ड का है। कैसी बात करते हो तुम? सोने का है ये? बोले हाँ, नकली होगा। नहीं, प्योर है, हमने खरीदा बंबई से, प्योर है।